आखिरकार तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू सिंघानिया मेंशन में घुस आया और इस तरह से हमारी भाभियों को छू रहा था। अब आगे आज तो मैं तेरी यहीं कब्र खोद दूंगा, ध्रुव आहान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। आखिरकार तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू सिंघानिया मेंशन में घुस आया। तभी रौनक ने अपने कानों पर हाथ रख दिए और जोर से चीख मारी, क्योंकि अचानक वो भी घबरा गई थी, क्योंकि सब लोगों ने उसे जिस तरह से आकर गन पॉइंट पर ले लिया था, डीजे वगैरह ढोलकियां सब फोड़ती थी, तो रौनक भी अब घबरा गई थी और बोली, देखिए आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी। जैसे ही रौनक ने ये कहा मैं डांस कर रही थी, सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान बोला, अच्छा अब बंदूक सामने देखी तो अपना जेंडर ही बदल लिया, कर रहा था की जगह कर रही थी लगा दिया। ऐसा बोलकर आहान रौनक का मजाक उड़ाने लगा। तब तक आस्था रौनक के पास आकर खड़ी हो गई थी और उसके सामने खड़ी होकर आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब तो वे सभी दूसरे को हैरानी से देखने लगे थे और अपनी परेशानी जताते हुए बोले, आखिरकार भाभी को हो क्या गया है, इस तरह से पहले किसी अजनबी लड़के के साथ डांस करना और अब इस तरह से उसे सबके सामने डिफेंड करना, ये कहाँ का इंसाफ है। कहीं न कहीं उन्हें भी अब आस्था पर थोड़ा सा शक हो रहा था। लेकिन तभी रश्मि और साथ ही साथ राधिका भी आकर रौनक के सामने खड़ी हो गई। रौनक के लिए परवाह जताते हुए बोली, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। अब तो सब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार इस लड़के ने उनकी भाभी इन लड़कियों को क्या खोल कर पिला दिया कि इस लड़के की पैरवी के लिए तीनों की तीनों आकर सामने खड़ी हो गई हैं। वहीं अरमान अब गुस्से से आस्था को घूरता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था और डेविल टोन में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी लड़के के साथ डांस करने की और अब उसे इस तरह डिफेंड करने की, इस लड़के की तो अब लाश ही यहां से जाएगी। जैसे ही अरमान ने आग उगलती हुई आंखों से ये कहा, आस्था डर गई थी और तब उसने अरमान के शब्दों पर गौर किया, तो इसका मतलब अरमान रौनक को लड़का समझ रहा है। तभी आस्था ने रश्मि की ओर देखा और रश्मि ने राधिका की ओर देखा था और तीनों को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग रौनक को लड़का समझ रहे हैं, तो वे तीनों एक दूसरे की ओर देखकर जोरों से हंस पड़ी। वहीं साथ साथ रौनक भी अब उनकी बातों का मतलब समझ गई थी और वो भी हंसने लगी थी। अब सबके सब कन्फ्यूजन से एक दूसरे की ओर देखने लगे थे और सोचने लगे, क्या ये सारी लड़कियां पागल हो गई हैं और साथ ही साथ लड़का भी पागल हो गया है, शायद अपनी मौत को सामने देखने के बाद ही अपने मानसिक संतुलन खो बैठा है इसीलिए इस तरह से हंस रहा है। तभी नानी माँ वहां आती हैं और बारी बारी से उन सबको देखने लगी थी। तभी आहान कन्फ्यूजन से नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ लगता है ये लड़कियां पागल हो गई हैं और साथ ही साथ ये लड़का भी जो इस तरह से हंस रहा है अपनी मौत को सामने देखने के बाद भी। तभी नानी माँ ने हल्का सा आहान के पास जाकर उसके सर पर एक चपेट लगा दी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, पागल ये लड़कियां नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो, जो देखा उसी पर विश्वास कर लिया और इसकी जान लेना चाहते हो तुम, एक मिनट ठहरो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रौनक के सर पर से बंधा हुआ सरदार टाइप का एक पगड़ी सी पहन रखी थी उसको निकाल दिया और उसके घने और लंबे बाल सबकी आंखों के सामने थे और साथ ही साथ उन्होंने जल्दी ही रौनक के मुंह की बड़ी सी मूंछ को खींच दिया। रौनक जो कि पूरी तरह से एक सरदार जी बनी हुई थी उसकी मूंछ जैसे ही खिंचकर निकली तो उसने हल्की सी चीख मारी और घूरकर सबको देखने लगी। अब सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे थे, वहीं आहान तो मुंह खोले रौनक की ओर ही देख रहा था। रौनक जो कि उस वक्त सरदार जी के वेश में थी, अब ध्रुव भी रौनक को सामने देखकर मुस्कुराने लगा था। वहीं आकाश और सुमित भी एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी से उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक जेब में रख दी। वहीं अरमान भी अब थोड़ा सा सकपका गया था और अगले ही पल बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया था। अरमान के जाने के बाद सुमित ने एक नज़र राधिका की ओर देखी, फिर रौनक की ओर देखकर वो भी फटाफट से अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि इस वक्त वे सारे ही शर्मिंदा से हो गए थे, केवल आहान और छोव वहां बचे थे। वहीं टाइगर भी अब जल्दी ही अरमान के पीछे पीछे चला गया था। अब छोव और आहान नज़र झुकाकर बारी बारी से सबको देख रहे थे और अब सारी लड़कियां घूर घूर कर आहान और छोव को देख रही थी। तभी आहान तुरंत अपने कानों को पकड़कर बोला, भाभी हमें लगा कि कोई लड़का आप लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा था इसीलिए हमने, ये कहते हुए आहान अब चुप हो गया था। तभी रौनक तुरंत आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, वो आंखें मटकाते हुए डांटती है, इसीलिए तुमने मुझे गन पॉइंट पर ले लिया था, आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को। ऐसा बोलकर रौनक आहान को गुस्से से घूरने लगी है। अब आहान के पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे इसीलिए वो भी तुरंत अपने कमरे में भाग गया था और जल्दी ही ध्रुव भी बिना कुछ कहे वहां से भाग गया था, मानो कि उनके पीछे भी किसी ने सरकारी पागल कुत्ते छोड़ दिए हों। सभी के वहां से जाने के बाद अब सारी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी और अचानक नानी माँ समेत खिलखिलाकर जोरों से हंसने लगी थी।
तब नानी माँ राधिका और रश्मि साथ ही साथ आस्था के पास आती हैं और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती हैं, अब तुम लोगों को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ये बात सब पता चलती है कि वे तीनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो इस तरह से रौनक को लड़का समझकर उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सभी मन ही मन में मुस्कुराने लगी। वहीं राधिका के मन में तो तितलियां उड़ने लगी थी कि जिस तरह से सुमित फील कर रहा था, जिस तरह से उसने रौनक को गन पॉइंट पर लिया था, तो उसे भी अब ऐसा लगने लगा था मानो कि वाकई सुमित मुझे बेहद प्यार करता है। तभी आस्था क्यूट सी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है नानी माँ, हम सब आपकी बात समझ गई हैं और हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। अभी हम अपने कमरे में जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। वैसे भी हमने तो ये सब कुछ अपना स्ट्रेस भगाने के लिए किया था, लेकिन अब तो हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़बड़ाते हुए आस्था जल्दी ही अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह जैसे ही वो कमरे में आती है, उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था। आस्था हैरान हो गई क्योंकि अरमान तो कमरे में ही आया था, तो कमरे में इस तरह से अंधेरा क्यों था? लेकिन तभी आस्था का हाथ पकड़कर अरमान ने अपनी ओर खींच लिया था और आस्था सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अरमान आस्था पर जी भरकर नजर डाल रहा था। आस्था ने बड़ा ही खूबसूरत सा गेटअप लिया हुआ था जिसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी। तो इसीलिए अरमान ने आस्था को तुरंत अपनी बाहों में कस लिया था। वहीं आस्था मुस्कुराकर अरमान की ओर देख रही थी। वो उसे चढ़ाते हुए बोली, क्या आप डर गए थे? आपको लगा कि हम किसी लड़के के साथ डांस कर रहे हैं? जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान ने अपना सर आस्था की गर्दन में छुपा लिया था और वहां पर आस्था को जोरों से किस करते हुए बोला, लकी है रौनक कि बच गई। ऐसा बोलकर अरमान ने अपने होठों को आस्था के होठों से जोड़ दिया था और आस्था भी अरमान का प्यार पाकर पूरी तरह से सिहर उठी थी। और जल्दी ही आस्था ने भी आगे बढ़कर अरमान को गले से लगा लिया था और दोनों में कितनी ही देर तक जोर शोर से प्यार चला। वहीं दूसरी ओर
राधिका जैसे ही अपने कमरे में गई, वो दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगी थी। जिस तरह से सुमित ने रिएक्ट किया, कहीं ना कहीं राधिका को बेहद अच्छा लगा था, इसलिए राधिका अपने कमरे में गोल गोल घूमने लगी थी, क्योंकि आज पहली बार सुमित के साइड से उसे प्यार का एहसास हुआ था। राधिका को उस वक्त बड़े ही खुश नजर आ रही थी। वेल, जल्द ही राधिका ने फटाफट से बाथरूम में जाकर खुद को कपड़ों से आज़ाद किया और आज वो शर्माई शर्माई से बड़े ही प्यारी लग रही थी। राधिका ने फटाफट से बाथरूम पहना और नहाकर जैसे ही वो बाहर आई, अचानक से उसे सुमित उसके बेड पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अब राधिका सुमित को वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वो बाथरूम में थी। उसे तो लगा था कि कमरे में कोई नहीं, अकेली है, तो इसी हिसाब से वो सही से कपड़े पहनकर नहीं आती थी। सुमित वहां राधिका को थोड़ा सा डराने, धमकाने और साथ ही साथ इस बात का एहसास कराने आया था कि वो इस बात को लेकर ज्यादा गलतफहमी का शिकार ना हो कि उसे किसी लड़के के साथ देखकर सुमित को जेलस फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राधिका को इस तरह से बाथरूम में देखा, तो उसकी सिटी सिटी गुम हो गई थी। फिर वही सुमित, जो कि राधिका को डांटने के इरादे से वहां आया था, अब राधिका को इस तरह से गीले बालों में और थाई से ऊपर बाथरूम में देखा तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी। वहीं राधिका पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गई थी कि वो करे तो करे क्या, वो किस तरह से अपने आप को छुपाए। लेकिन अब तो सुमित के सामने वो खड़ी हुई थी। तभी सुमित तुरंत बेड से खड़ा हुआ और राधिका के करीब आया। उस वक्त राधिका बड़ी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। अचानक सुमित राधिका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं राधिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सुमित उसे अब किस करने वाला है। लेकिन राधिका के बेहद करीब जाकर अचानक उसके बालों को कसकर पकड़कर सुमित बोला, ज्यादा गलतफहमी में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ये बोलकर सुमित जल्द ही राधिका को बेड पर धक्का देता हुआ वहां से चला गया था। वहीं राधिका, जो थोड़ी देर पहले खुश हो रही थी, उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर रश्मि, जो कि लहंगा चोली में बेहद खूबसूरत लग रही थी, आकाश की नजरों में समा गई थी। और जैसे ही रश्मि अपने कमरे में गई, आकाश उसका इंतजार कर रहा था और उसे गोद में लेकर गोल गोल घूमने लगा। रश्मि फिर मुस्कुराने लगी थी और प्यारी स्माइल करते हुए पूछती है, क्या आप वाकई किसी की जान ले लेते अगर कोई हमें छूता तो? जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आकाश ने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर की ओर करते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हें किसी ने भी छूने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये कहकर आकाश ने रश्मि को जोरों से गले से लगा लिया था। उनके बीच में से हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आकाश रश्मि को एक मिनट के लिए भी छोड़ेगा तो रश्मि उससे छोड़कर कहीं चली जाएगी, और रश्मि भी आकाश का इतना प्यार पाकर उसकी आंखें नम हो उठती हैं। वहीं दूसरी ओर दादाजी एक बार फिर अपने परिवार में इस तरह से हंसी, खुशी और प्यार और माहौल देखकर काफी खुश हो गए थे। वहीं उन चारों ने जो प्लान किया था कि सबको बाहर लेकर जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक अपने अपने पार्टनर को ढेर सारा प्यार करने के बाद उन्हें तैयार होने के लिए कह दिया था, और आस्था अरमान के प्यार के बाद और भी ज्यादा खिलकर गुलाब हो गई थी। वहीं प्रियंका को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला कि अरमान सबको लेकर बाहर जा रहा है,
तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और उसने जानबूझकर आज एक शॉर्ट ड्रेस चुना था जो कि उसकी थाई तक आ रही थी और ऊपर से उसके जिस्म का काफी ज्यादा हिस्सा रिवील हो रहा था। उस ड्रेस में वो बेहद हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि प्रियंका के पास कमाल का फिगर था। वहीं प्रियंका ने सोचा कि आज तो अरमान उसकी ओर पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि आस्था तो हमेशा पूरे बंद कपड़े पहनती थी तो इसमें इतनी ज्यादा वो आकर्षक नहीं लगती थी। लेकिन आज तो प्रियंका ने सोचा कि जैसे ही अरमान उसे इन कपड़ों में देखेगा तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा, इसीलिए प्रियंका अपने लेवल पर पूरी तरह से तैयार होने लगी थी। वहीं आस्था को जब ये पता चला कि अरमान उसे आज कहीं बाहर लेकर जाने वाला है तो आस्था ने बाहर जाने के लिए एक बार फिर से अपनी माँ की साड़ी को चुना था क्योंकि वो साड़ी उसके लिए बेहद स्पेशल थी और उसने लास्ट टाइम वो साड़ी तब पहनी थी जब वो रश्मि के साथ स्कूटी से मॉल जा रही थी। लेकिन अब नानी माँ की मदद से आस्था ने जल्द ही वो साड़ी पहन ली थी। उसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और वैसे भी आस्था के लिए आज स्पेशल मोमेंट होने वाला था। आज अपने पति के साथ पहली बार वो इस तरह से बाहर जा रही थी तो वो आज कुछ ज्यादा ही सजी धजी हुई थी। बड़ा सा उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था, एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगाई थी जिसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत और अरमान के प्यार करने के बाद तो बेहद खिलखिला रही थी। हालांकि उसकी नेक के पास लव बाइट्स का निशान मौजूद था जिसे आस्था कवर करना भूल गई थी। वेल, जल्द ही आस्था अच्छे से रेडी होकर नीचे खड़ी हुई थी। उसने देखा कि रश्मि राधिका तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। राधिका जाना नहीं चाहती थी लेकिन रश्मि ने इंसिस्ट किया। वहीं रौनक ने भी जाने से मना कर दिया था लेकिन रश्मि और आस्था के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। तब नानी माँ ने सबको बोला कि आप बच्चों के बीच में हम जाकर क्या करेंगे, तो आप लोग जाइए और होकर आइए।